जयधवला पुस्तक सोलावी लेक्चर नंबर 7 जयधवला टीका है जो कषाय पौर तथा चुन्नी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यतिशुभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। 16वीं पुस्तक में वही चारित्र मोक्ष अपना का अर्थाधिकार चल रहा है और हम पृष्ठ संख्या 85 पर आ गए। 85 हम ये बात यहाँ देख रहे थे, पुष्टि वेदक जो है, संग्रह पुष्टि का वेदन करने वाला, तो वहाँ जो उदीर्णा और उदय जो ऊपर आकर्षण करके उदीर्णा होकर उदयावली में यानी उदय के समय में गिर जाते हैं वो परमाणु, उनसे वहाँ ऑलरेडी जो है उदय रूप जो स्थिति जिसका नंबर आया है उसमें असंख्यात गुणा प्रदेश यानी परमाणु होते हैं, और वो किस रूप से उदय में आते हैं तो मध्यम पुष्टि रूप से उदय में आते हैं। ये जो उत्कृष्ट की तरफ और जघन्य की तरफ टोटल जो अनंत पुष्टियों के असंख्यात भाव प्रमाण वो भी अनंत है, वे पुष्टि अपने रूप से उदय में नहीं आती है, मध्यम पुष्टि रूप होकर उदय में आती है। इसकी चर्चा अपनी चली तो उसमें हमने ये बात देखी कि जो नहीं उदीर्ण होने वाली उदय में नहीं आने वाली जो पुष्टियां उसमें से एक एक पुष्टि उदय में आने वाले अनंत पुष्टि रूप से हो जाती है। यानी एक पुष्टि में बहुत सारे परमाणु है ना, हमने ये देखा ये बीच वाले तो उदय योग्य है और ये उदय के अयोग्य है, तो उसमें तो अनंत पुष्टि है। अभी हम एक पुष्टि की बात करते, उस एक पुष्टि में अनंत परमाणु, अनंत परमाणुओं को उतना अनुभाग है। अब उनमें से अनंत परमाणु है तो ये इतनी जितनी उदय रूप जो रेंज है उसमें जितनी पुष्टियां उस एक एक पुष्टि में उसके परमाणु डिस्ट्रीब्यूट हो,
एक
इस एक के अनंत में, दूसरे के अनंत में, तीसरे के अनंत में, सभी अनंतों के अनंतों में, एक एक के, ऐसा नहीं कि किसी में किसी का माल चला जाए किसी का, ऐसा नहीं है, एक एक का सभी में जाएगा। अब यहाँ पूछते हैं एक एक में कितने का आएगा, तो एक एक में अनंतों का आएगा। यहाँ के अनुदीर्ण एक एक का प्रदेश सभी अनंतों में पुष्टियों में जाएंगे और उदय रूप एक एक में सभी अनंतों में से आएंगे। उदय रूप है हाँ, वही तो अनंत अनुभव, अनंत वेरिएशन है, उसको एक एक पुष्टि कहा। हाँ, उनके सभी जितनी अनंत पुष्टियां सभी में उसके परमाणु डिस्ट्रीब्यूट हो, यानी एक एक का सभी में जाएगा। इसका अर्थ क्या है, यहाँ प्रत्येक में तो सभी में से आएगी ना, सभी अनंतों में से आएंगी।
तो एक ही लग
वो है संग्रह कृष्टि ग्रुप, हम उसको ऊपर नीचे बताएंगे तो हम उसको ऐसा यानी ये हम आड़ा बता रहे क्योंकि उदय रूप है। अभी इसका वर्टिकल पकड़ो और फिर एक एक कृष्ण में अनंत परमाणु है उसकी रचना करो, जैसे हमने वर्गना में स्पर्धक में की थी वैसे। वर्गना हो स्पर्धक हो या कृष्टि हो, वर्गना के स्पेशली वर्गना और कृष्टि वो सदृश अनुभाग वाले परमाणुओं को कहेंगे। अगर अनुभाग की हम जघन्य से ऊपर ऐसे वर्टिकल अगर उसकी ऊर्ध्व रूप रचना करेंगे तो नीचे जघन्य अनुभाग ऊपर अधिक अनुभाग, और समान अनुभाग वाले एक एक लेवल पर बताएंगे। पहले उन्हीं को वर्गणा कहा था, अब उन्हीं को कृष्टि कह रहे हैं क्योंकि अनुभाग का इतना अनंत गुणा घटना हुआ है। परंतु ऐसी सभी कृष्टियां प्रत्येक निषेक में पड़ी है, ये बात पहले इतनी क्लियर नहीं होती थी ना, अभी तो ख्याल में आती है। यहाँ क्या देखते हैं, देखो हमने कल पढ़ा था ना 85 पेज पर नीचे से दूसरा सूत्र पढ़ते हैं जो पढ़ा था हमने। इस कारण से जिन अनंत वर्गणाओं को यानी कृष्टियों को उदीर्ण करता है यानी उदय में लाता है, उनमें एक एक वर्गणा यानी एक एक कृष्टि अंतर कृष्टि संक्रमण करती है। जो उदय में नहीं आने वाली एक एक कृष्टि उदय में आने वाली सभी कृष्टि रूप से परिणमित होती है, यानी कुछ परमाणु वही उदय तो होगा ही, प्रदेश उदय तो सबका चलेगा, अनुभाग उदय नहीं हो रहा है उनका, अपने रूप से अनुभाग उदय नहीं हो रहा। यानी हमारी चर्चा चल रही थी ना अश्विन भाई के साथ, उनका कहना था कि वो मध्यम रूप वाले ही परमाणु नीचे आते हैं और उदय में आते, ऐसा नहीं है। वो प्रदेश वो परमाणु तो उदय में आकर जा रहे हैं, फिर रहे हैं, परंतु वो एक समय में अनुभाग तरण होकर उदय में आ रहे हैं। यानी प्रदेश की अपेक्षा उदय हो रहा है, अनुभाग की अपेक्षा अपने रूप से उदय नहीं हो रहा, अनुभाग चेंज होकर उदय आ रहा है।
क्या जो अनुभाग बड़ा था प्रतिकृष्टि अनुभाग अनेक गुणा अनेक गुणा है, दोनों का जो असंख्य अपने बात प्रमाण पर कृष्टिया उदय रूप नहीं होती तो उसकी उदीना उदीना होती, उसका एक समय में उसका अनुभाग इतना कम हो जाता है।
केवल कम नहीं, जघन्य की तरफ से बढ़ेगा भी, जघन्य की तरफ जो अनंत कृष्टिया है उनका अनुभव बढ़कर मध्यम अनंत कृष्टि तो अनंत अनंत गुणा होगा, और वो भी केवल एक कृष्टि रूप से नहीं हो रहा है, वो भी अनंत कृष्टियों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। यानी एक एक अलग अलग परमाणुओं में कितने वेरिएशन है अनुभव के, जो एक समय पूर्व एक सदृश एक कृष्टि में थे यानी एक सदृश अनुभव था, अभी वही पूरा प्रदेश कुंज जो अनंतों का है वो अनंतों में अलग अलग बिखर गया, अलग अलग कृष्टियों में हो गया। अब कौन से निमित्त से कौन सा कार्य हो रहा है, एक करना नियोग के द्वारा जितना पूर्ण होता है ना निमित्त से कुछ नहीं होता, भले कथन करना नियोग में निमित्त का होता है। ये अनुभाग की अपेक्षा या उदय की अपेक्षा जो जो बातें आती है, वर्तमान समय में इतने सारे परमाणु पड़े हैं, अभी हम इसकी बात छोड़ देते एक सपना की, हम रेगुलर मिथ्या दृष्टि की बात करेंगे। मिथ्या दृष्टि को अनंतानुबंधी का उदय चल रहा है ना, सभी चारों का, और उसमें क्रोध मान माया लोभ सभी परमाणु वहां पड़े हैं, किसका उदय होगा, एक समय ऊपर सभी पड़े हैं, जो वर्तमान समय में है उसको हम कहेंगे इसका उदय चल रहा है, परंतु वो कौन नक्की करता है। जीव के परिणाम, जीव क्रोध करता है तो क्रोध हाजिर है, मान करते है तो मान हाजिर है, अभी उसकी बात छोड़ो, हम चौथे गुण स्थान की बात करें। अनंतानुबंधी का उदय नहीं है, कहाँ पड़ा है, एक समय ऊपर पड़ा है। अब वो जीव उसका अप्रत्यक्षण प्रत्यक्षण संजलन का उदय चल रहा है, तो एक समय ऊपर वो अनंतानुबंधी रूप से था, एक समय में ही अप्रत्यक्षणादि रूप होकर उदय चल रहा है उसका, उसके उदय का वहां अभाव है। उसको उपशम कहते हैं, अप्रशस्त उपशम कहते हैं, उसका अर्थ क्या है? अपने रूप से उदय में नहीं आ रहा, वहां अनंतानुबंधी का वो प्रत्यक्ष अनारद्ध रूप, अब यहाँ अनुभाग अधिक था कृष्टि का, वो अन्य रूप होकर उदय में आता है। यानी ये ऐसी बातें हर जगह चलती है, ऊपर ऊपर की गुणसाहा में हम देखते हैं जिस कषाय का उदय मिट जाता है, उदय की विच्छित्ति होती है, तो उन कषायों का क्या होता है? कर्मों का, पड़े हैं सत्ता में, एक समय ऊपर पड़े हैं, और उदय आते आते वहां की उस गुणस्थान में जो उदय योग्य है वहां उसी रूप होकर उदय में आए। तो इतने अनंत परमाणुओं में अनंत वेरिएशन क्यों? ये प्रश्न योग्यता से, अपनी अपनी योग्यता से हो रहा है
परमाणु,
बिल्कुल वो कार्य उनमें हो रहा है ना, पृष्टि रूप अलग अलग पृष्टि रूप से परिणमित हो रहे हैं, परिणाम तो एक है। हाँ, निमित्त रूप से जरूर है, क्योंकि ऐसा जो पृष्टि रूप रचना तो मिथ्या दृष्टि की तो है ही नहीं, मिथ्या दृष्टि की बात छोड़ो, नवे में एंटर हुआ है उसकी भी नहीं है, वो विशिष्ट समय में हो जाती है, विशिष्ट विशुद्धि के साथ हो जाती है, निमित्त है जरूर, परंतु निमित्त की तरफ एक ही है, तो अनंत परमाणुओं में अनंत वेरिएशन क्यों, ये प्रश्न होता है ना। तो वहां ये जो कार्य है कर्मों की अवस्था हो रही है, वो कर्मों की अपनी योग्यता से ही होती है, बिल्कुल जीव में जो कुछ हो रहा है जीव की अपनी योग्यता से। हम कहेंगे वहां जब प्रथम उपशम होता है, दर्शन होने का उपशम हुआ इसलिए जीव को सम्यक हुआ, ये कथन है। अब आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, प्रूव होती है, बार बार प्रूव होती है, क्योंकि अभी जो हम कृष्टि की बात देख रहे हैं कि मध्यम रूप से उदय में आ रहे हैं, अब कृष्टि की बात छोड़ो, सामान्य जो वर्तमान जो निषेय उदय रूप है किसी भी कर्म का, कोई भी जो है उसमें अपनी अपनी शक्ति के अलग अलग अंश पड़े हैं, जिसको हम कहते हैं हम स्पर्धक, कितने स्पर्धक पड़े? अनंत स्पर्धक पड़े, जघन्य अनुभाग से लेकर उत्कृष्ट अनुभाग तक के अनंत स्पर्धक, और एक एक स्पर्धक में अनंत अनंत वर्गणा, यानी इतनी वेरिएशन है वर्तमान समय में, फिर भी जीव का किस रूप भाव होगा? हाँ। तो हम जब कहते हैं तत्व जब विचार चलता है तो वो मंद होकर अनुभाग उदय में आता है, इसका अर्थ क्या है? वहां तो सभी अनुभाग पड़े हैं, परंतु उसी का उदय कहलाएगा जिस रूप से यहाँ कार्य हो रहा है, कार्य हुआ तो उसको निमित्त कहेंगे ना, निमित्त रूप से उसी का उदय कहलाएगा कि जिस मात्रा में यहाँ जीव परिणाम कर रहा है। हम उल्टा समझते नहीं, क्या करे उसका ऐसा तीव्र उदय आया इसलिए जीव को करना पड़ा, वहां तो तीव्र मंद सभी अनुभाग वर्तमान समय में पड़े। इस ओर से हम अगर विचार करेंगे, क्योंकि अभी तक हम क्या कह समझते थे, ऊपर ऊपर तीव्र है नीचे नीचे मंद है, परंतु वो अनुभाग के अकेले की अपेक्षा बात करेंगे तो, परंतु एक वर्तमान का निषेक कोई भी एक निषेक ले लो उसमें सभी स्पर्धक पड़ेगा। हाँ जीव कर्म के कारण, नहीं नहीं एट अ टाइम दोनों है, एट अ टाइम निमित्त नैमित्तिक समझ, बिल्कुल है। यानी हम देखते हैं ना, जीव जब तत्व विचार में जुड़ जाता है तद्रूप होकर परिणमता है, तो ये करण लब्धि के परिणाम जो बताए हैं, या उसके पहले प्रायोगिक लब्धि में जो होता है, कर्मों में इतनी वेरिएशन होती है और जीव के परिणामों में उसकी विशुद्धि बढ़ रही है। कर्म की तरफ से कथन करना है तो हम कहेंगे कर्मों का अनुभाग मंद होकर उदय में आ रहा है इसलिए जीव को शुभ परिणाम है, यहाँ कहेंगे जीव की विशुद्धि बढ़ रही है वहां कर्मों में अपने आप ऐसा हो रहा है। एक समय में दो कार्य होते हैं, अपना अपना कार्य का दूसरे को निमित्त कहेंगे हम। हाँ दोनों ओर से, एक ही वर्तमान निषेक में उत्कृष्ट की तरफ से और जघन्य की तरफ से जो अनुभाग की पृष्टियां पड़ी है वो मध्यम रूप होकर उदय में आएगी। अभी हम आगे बढ़ेंगे, यानी जिस रूप से उदय हो रहा है उनमें एक एक अंतर पुष्टि जो उदीर्यमान में अनुदीर्यमान जो है वो एक एक उस रूप परिणमती है, ये बात हमने पढ़ी। नीचे से तीसरी लाइन, यह सूत्र गतार्थ है। इस प्रकार गाथा के पूर्वार्ध की विभाषा करके अब गाथा के उत्तरार्ध की विभाषा करने के लिए इस सूत्र को कहते हैं। कहते 21 से भी उदीर्णाए किट्टिये केतिया किट्टियो संकमंती, एक भी उदीर्ण पृष्ठी पर कितनी पृष्ठियां संक्रमण करती हैं। पहले ये बात बताई थी, अनुदीर्यमान जो पृष्ठियां हैं वो एक एक पृष्ठि अनंतों में, उदीर्यमान अनंत में संक्रमण करती है। अब कहते एक एक उदीर्यमान पृष्ठि में कितने कितने पृष्ठियों का माल वहां आता है। यह कहते हैं पृच्छा सूत्र सुगम है, तो उसका भी समाधान करते हैं। जाओ आवलीय पूर्व पवित्ठाओ उदयन अदठि दिगम विपच्छन्ति ताओ सव्वाओ 21 से उदिन्नाए किट्टिये संकमन्ति। जो पृष्ठियां उदयावली में पहले प्रविष्ट हुए हैं वे अधस्थिति गलन होकर अर्थात एक एक स्थिति गलकर उदय द्वारा विपाक को प्राप्त होती हैं, वे सब एक एक उदीर्ण पृष्ठि पर संक्रमण करते हैं। यानी ये उदयावली में पड़ी थी सारी, निषेक तो उदयावली में थे तो प्रत्येक निषेक में सभी पृष्ठि पड़ी थी। अब एक एक निषेक नीचे आया है उदय की तरफ तो सभी पृष्ठियां वहां पड़ी है और वो उदीर्यमान यानी उदय होने वाली पृष्ठि रूप से परिणाम कर उदय में आएगी। देखो उदीर्णा स्वरूप से उदय में वर्तमान अनंत पृष्ठिया, यानी जो उदीर्णा होकर आने वाली वो तो अनंत है, पुनः उसमें से उनमें से एक पृष्ठि सदृश धरण रूप से क्रम से उदय में प्रवेश करने वाली अनंत पृष्ठियों के सदृश धरण रूप होकर परिणाम थी। हमने ये देखा था एक एक पृष्ठि में जितने परमाणु है वो उदय रूप होने वाले अनंत पृष्ठि रूप से परिणाम थे। अलग अलग परमाणु अलग अलग पृष्ठियों में डिस्ट्रीब्यूट होते, इस प्रकार अलग अलग जितनी कृष्टियां उदीर्ण होती है यानी उदय रूप जितनी कृष्टियां हैं वे सभी कृष्टियां सदृश धन रूप होकर मध्यम कृष्टि रूप से ही उदय में प्रवेश करती है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। इस प्रकार इस सूत्र द्वारा क्रम से उदय द्वारा उदय में प्रवेश करती हुई उपरिम स्थिति अनुभाग की मध्यम पृष्ठि रूप से परिणमन करने की विधि कही, ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। उपरिम स्थिति अनुभाग की मध्यम पृष्ठि रूप से परिणम करने की विधि है, यानी वो उदय द्वारा यानी एक एक समय नीचे गलते गलते आते आते उदय में आ गई। उदय में आती तो किस रूप आती, तो उदय में उदय रूप जो मध्यम पृष्ठियां हैं वो स्वरूप होकर उदय में आती है। स्थिति अनुभाग दोनों लिए, उपरिम स्थिति अनुभाग की
विवक्षित समय जो अभी उदय में चल रहा है तो उसके दोनों भाग के जो अनुदीर्ण है हमने कहा कि जो उदय में आती है वो मध्यम दृष्टि के लिए रूप नहीं आती है, दोनों देव को छोड़ के नहीं आती है, और जो पर्टिकुलर वन अभी उदय में है उसके दोनों भाग के जो अनुदीर्ण जो है वो उसी में मध्य नहीं होते, ऊपर सब गिर जाते हैं।
नहीं नहीं वो ऊपर नीचे का ऊपर कैसे चले जाएंगे,
उसी में
वो मध्यम रूप होकर ही वो नीचे उदय रूप हो जाते।
तो अभी जो हम बोल रहे हैं कि वो जो अनुकीर्ण है वो सब में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उसमें क्या मध्यम
सब में ने जो उदय रूप कितनी पृष्ठियां है, अनंत पृष्ठियां उदय रूप है, मध्यम अनंत पृष्ठियां उदय रूप है, उस रूप टर्न हो जाती है। वर्तमान एक निषेक में ही ये सब, वर्तमान एक निषेक में दोनों ओर की कृष्टियां जो कोई उत्कृष्ट के तरफ वाली कोई जगन्य की तरफ वाली, वो किस रूप से उदय में आती है, मध्यम रूप से होकर उदय। तो मध्यम किसी एक कृष्टि रूप होती है नहीं, मध्यम जितनी अनंत है उनसे सब रूप हो जाता है, ये कहना। अब गाथा के उत्तरार्ध से संबंध रखने वाले इसी अर्थ का उपसंहार द्वारा प्रदर्शन करते हुए उत्तर सूत्र को कहते हैं। एदेन कारणेन पूर्व पवित्ठा 21 से अनंतात्ति भन्नंती। इस कारण से पहले प्रविष्ट हुई अनंत पुष्टियां एक एक पृष्ठी पर संक्रमण करती हुई कही जाती है। जैसे अनंतों में से एक एक अनंतों में आती, यानी हर एक एक पृष्ठी का माल सभी में आया, तो एक एक में सभी का आया ना, दोनों ओर से बता रहे। यह सूत्र गतार्थ है। इस प्रकार आठवीं भाष्य गाथा के अर्थ की विभाषा समाप्त करके अब यहीं पर गाथा के उत्तरार्ध में कहे गए अर्थ के विषय में फिर भी विशेष निर्णय को उत्पन्न करने के लिए नौवीं भाष्य गाथा का अवतार करते हैं। और भी बताएंगे, अपना कुछ और कंफ्यूजन होगा तो दूर हो जाएगा। एतो नवमी भाष्य गाथा, इससे आगे नौवीं भाष्य गाथा है। कुछ करेक्शन है क्या? वो एक कर दिया हमने और नीचे उसको पे पच्छा किया। गाथा पढ़ेंगे, ये सूत्र सुगम है। अब गाथा बता रहे 174 नंबर की। जे चाणुभागा उदीरिदानियमसापोगेन तेयप्पाणुभागा उपविंठा परिणमन्ति। जितनी भी अनुभाग कृष्टिया नियम से प्रयोगवश उदीरित होती है, प्रयोग में भी जीव के जो परिणाम के कारण उन्द्रुप होकर पहले उदयावली में प्रविष्ट हुई अनुभाग कृष्टियां परिणाम की है। जो नियम से अनुभाग कृष्टियां परिणाम विशेष के कारण उदीरित होती है, उन्हें मिलाकर जो अनुभाग कृष्टियां स्थिति क्षय से उदय में प्रवेश करती है, दो प्रकार से उदय में आती है। एक तो अधोगलन द्वारा अपना अपना नंबर पर आती है और एक तो ऊपर से उदीर्ण होकर आती है। दो प्रकार से आती है, अर्थात पहले उदयावली में प्रविष्ट हुई जो अनुभाग कृष्टियां हैं, वे भी उस रूप से परिणमती है, क्योंकि अधस्तन और उपरीन असंख्यात भाग प्रमाण अनंत कृष्टियां उदीर्ण होने वाली मध्यम कृष्टि रूप से परिणम कर फलित होती है। यह उक्त कथन का तात्पर्य है, यानी उसका फल किस रूप से होगा? वर्तमान में समय में मध्यम रूप से, और अन्य रूप से अवस्थित पुद्गल स्कंदों का अन्य रूप से भी परिणमना विरोध को प्राप्त नहीं होता। यानी पहले वो अधिक या कम, यानी ऊपरी या नीचे अन्य अनुभाग रूप से थे, वो भी वर्तमान में मध्यम अनुराग भाग रूप से उदय में आते हैं। तो कहते हैं ऐसे पुद्गलों में ऐसा परिणमन विरोध नहीं है कुछ, क्योंकि बाह्य और अंतरंग कारण विशेष का आश्रय करके कर्म पुद्गलों का विचित्र सत्ता रूप से परिणमन रूप सिद्धि का प्रतिषेध नहीं है। विचित्र ने अनेक प्रकार, विचित्र ने हम ऐसा मराठी में वैसा नहीं, विचित्र का अर्थ ही होता है अनेक, विविध सत्ता रूप से परिणमन रूप सिद्धि का प्रतिषेध नहीं है, यानी वो हो सकता है। यानी अंतरंग और बाह्य कारण से कर्म पुद्गल परमाणु भी अन्य अन्य प्रकार से अनेक प्रकार से परिणमित होते हैं। अब इसी सूत्र के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए आगे का विभाषा ग्रंथ आया है। ये तो नवी भाषा गाथा बताई है, अब इसी की विभाषा बता रहे। विहासा, अब इस भाष्य गाथा की विभाषा करते हैं। सुगमम, यह सूत्र सुगम है। जाओ किट्टियो उदीर्णाओ ताओ पड़ुच्छ अनुदीरिज्य माणिगाओ विकीर्तियो जाओ अदट्ठिदिगमुदयम् पविसन्ति तावो उदीरिज्यमाणियानम् किट्टिनम् सरिसाओ भवन्ति। हिंदी पढ़ेंगे। इसका अर्थ जो कृष्टियां उदीर्ण हुई है उनकी अपेक्षा अनुदीर्यमान भी कृष्टियां है, जो एक एक अधस्थिति का गलन होकर उदय में प्रवेश करती है, वे उदीर्यमान कृष्टियों के सदृश होती है। जैसे उदीरित होकर नीचे आई थी उसमें भी जगन से उत्कृष्ट सभी अनुभाग थे, परंतु वो मध्यम रूप से होकर उदय में आई। ऐसे जो अधस्थिति गलने के द्वारा जो नीचे 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 आ रही है उसमें भी सभी अनुभाग पड़े हैं और वो भी मध्यम रूप से उदय में आए। वर्तमान समय आवली में नहीं होता है, परंतु जो वर्तमान वो जो रेगुलर चल रहा है उनका अनुभाग का कम होना उसकी बात नहीं है, पर उदय में आने वाली। हाँ, उदयावली में कुछ चेंजेस नहीं होते। उदयावली में प्रवेश करने के बाद नहीं होते ऐसा, क्योंकि उदयावली तो स्थिति की अपेक्षा उदयावली कहती है, परंतु हाँ उदयावली के नहीं, उसमें नहीं है। नहीं हाँ, यानी वो प्रदेश प्रदेश उदयावली के उदयावली में उदय अनुभाग की अपेक्षा भी नहीं होती। नहीं हाँ, जहाँ है वहीं पर होगा। देखो अनुभाग तो अपने अपने एक एक निषेक में सभी है, उसी में टर्न होगा। स्थिति की जब नीचे ऊपर करते उदय, यानी हम जिसको उदीर्णा करते हैं स्थिति की अपेक्षा, तो वो नीचे आते हैं जिस अनुभाग रूप से, जहाँ जो परमाणु है उस रूप से आते हैं। उदयावली में आने के बाद नहीं, परंतु उदय में आने की वहां पर हो जाता है
उसका।
हाँ अभी
अनुभव यहाँ पे जो 1200 उसमें अनुभव खंड का
वहाँ का, यहाँ अभी कांडाघात तो रुक गए है ना।
अनुसमय तो हो रही है,
उसको कांडाघात नहीं कहते।
अनुसमय
वो तो चल ही रहा है।
तो दूसरा क्वेश्चन क्या था,
अनुसमय
प्रविष्ट हो गए परमाणु का भी अनुसमय पतना होती है।
अनुसमय अपवर्तन तो किसको कहेंगे हम,
अनुभव
ऊपर के कृष्टियों का घात होना, सत्ता में से घात
होगा।
हाँ मगर घात किसका होगा, ऊपर की कुष्ठियों का होगा कि नीचे
कुष्ठियों में कम।
जैसे हम कहिए ऊपर की कुष्ठी नष्ट होगी,
लेकिन यहाँ पे तो क्या एक ही कुष्ठ में सभी कुष्ठियाँ।
या तो आप अनुभाग की चर्चा करो या निषेक की करो,
नहीं कुष्ठियों की बात करता हूँ।
हाँ
तो कुष्ठी जो एक एक कुष्ठियाँ जो पड़ी है वहाँ पे अभी जो प्रथम स्थिति में जो कुष्ठी आ जाएगी वहाँ पे भी अनुसमय अपवर्तना होगी
ना।
अच्छा वहाँ वो भी चल रहा है और जो ये जो मध्यम रूप से जो उदय हो रहा है
वो तो उदय की बात,
उदय
उदय की बात है, वो उदय की बात है। अब देखो हम यहाँ पढ़ेंगे आपको और क्लियरिटी होगी। उदीर्णा रूप से उदय को प्राप्त हुई मध्यम कृष्टिया ही शुद्ध होती है, पुनः उदय स्थिति को छोड़कर उपरिम स्थिति से लेकर उदयावली में प्रविष्ट हुआ प्रदेश पुंज जब तक उदय में प्रवेश नहीं करता तब तक सब कृष्टि विशेष से संयुक्त होकर उदय में प्रवेश करने की अवस्था में उपरिम और अधस्तन कृष्टियों के स्वरूप को छोड़कर मध्यम बहुभाग रूप से उदय कृष्टियों के स्वरूप से परिणमन कर फल देती है। यह उक्त कथन का तात्पर्य कितना स्पष्ट लिखा है कि जो उदयावली में जो प्रविष्ट हुआ है तो सत्ता के जितने अलग अलग वेरिएशन है कृष्टियों के, वो सब रूप से उसमें उदयावली में आ गया। और जब अधस्थिति गलने के द्वारा उसका उदय का नंबर आएगा, तब तक तो ऐसा ही है, उदय में आते हुए मध्यम रूप से उदय में आएगा। विशेषण नहीं, इस प्रकार इस भाष्य गाथा द्वारा क्रम से उदय रूप से उदय में प्रवेश करने वाली उदीर्यमान पृष्ठियों के, उदीर्यमान मध्यम पृष्ठि रूप से कारण सहित परिणाम कहाँ है, ऐसा यहाँ जानना चाहिए। इस प्रकार नूवी गाथा की अर्थ विभाषा समाप्त हुई। इसी का विशेषांक बता रहे हैं, 226 संख्यांक यानी संख्या वाली भाष्य गाथा के पूर्वार्ध में, यानी ये तो अभी हमने 226 पढ़ी थी, अब 282 पर है। पूर्व पवित्ठा नियमा 21 से 29 अनंता, यानी एक एक में अनंत आते हैं 82 पेज पर। अब यहाँ क्या बताना चाहते हैं, 226 संख्यांक भाष्य गाथा के पूर्वार्ध में, जा वगणा उदीरेदी अनंता तासु संकमदी एक्का, यानी जिस रूप से उदय है मध्यम, कितने हैं तो अनंत है, तो जो उदय में नहीं, यानी अपने रूप से जो उदय में नहीं आती ऊपर और नीचे की, वो एक एक पृष्ठि अनंतों में परिणमित होती, ये हमने देखा। यही यहाँ कह रहे हैं, 226 संख्यांक भाष्य गाथा के पूर्वार्ध में यह सिद्ध करके बतलाया गया है कि जो प्रति समय मध्यम पृष्ठियां उदीरित होती हैं, उनमें अधस्तन और उपरिम एक एक अनुदीर्यमान पृष्ठि संक्रमण करती है, तथा इसी भाष्य गाथा के उत्तरार्ध में यह बतलाया गया है कि विवक्षित संग्रह पृष्ठि के जो अधस्तन असंख्यात विभाग प्रमाण और उपरिम असंख्यात विभाग प्रमाण पृष्ठियां पहले उदयावली में प्रविष्ट हुई है, वे सब वेदी जाने वाली एक एक मध्यम पृष्ठि रूप से परिणमती है, अर्थात वे सब पृष्ठियां एक एक मध्यम पृष्ठि रूप से संक्रमण करती है, यानी सभी में से सभी में चला जाए। इसी बात का समर्थन करते हुए समुच्चय रूप में अगली 227वीं भाष्य गाथा में यह बतलाया गया है जो अभी हमने पढ़ी, कि जो विवक्षित संग्रह पृष्ठि की अधस्तन और उपरिम असंख्यात विभाग प्रमाण पृष्ठियां क्रम से उदयावली में पहले प्रविष्ट हुई है, वे उसी संग्रह पृष्ठि की उदीरित होने वाली मध्यम पृष्ठियों के रूप में संक्रमित होकर उदय रूप से परिणत होती है। यहाँ इन दोनों भाष्य गाथाओं में अधस्तन और उपरिम पृष्ठियों के मध्यम बहुभाग प्रमाण पृष्ठियों में संक्रमण करके उदय में आने की जो बात कही गई है, उस कथन को थियुक्त संक्रमण की अपेक्षा जानना चाहिए। हमने अन्यत्र भी देखा थियुक्त एक समय के लिए चेंज होकर उदय में आना, एक एक समय का निशान, उसको थियुक्त संक्रमण कहते हैं। उन्होंने ये बात नीचे आने वाले उदीर्ण होकर आने वाली, उदय में आने वाले मध्यम रूप से परिणमित हो। अब यहाँ कहते जो क्रम से नीचे आई है वो जो मध्यम रूप से उदीर्ण होने वाली उस रूप परिणमित हो, टोटल अर्थ क्या है कि मध्यम रूप से दोनों ही परिणमित होकर उदय में आते। अभी हम 89 पेज पर आ गए, नहीं ये एक रह गया ना, एक तो दसवीं भाष्य गाथा, इससे आगे दसवीं भाष्य गाथा आई है। नवीं भाष्य गाथा की विभाषा करने के अनंतर आगे अवसर प्राप्त दसवीं भाष्य गाथा की विभाषा करनी चाहिए, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। अभी 175 जो 228 वाली भाष्य गाथा सहित है इसको पढ़ेंगे। पश्चिमावली आए समयण आए दुजयण भा उक्कसहेट्ठिमा मज्झिमासु नियमा परिणमन्ति। समय होना चाहिए क्या?
समय
कुछ घोटाल है। हाँ वही तो मैंने पूछा, समय होना चाहिए। समयूनाये पश्चिम आवलियाय समयूनाय दुजेय अनुभागा उक्कसहेट्टिमा मच्छिमासु नियमा परिणमन्ति। अब यहाँ पढ़ते हैं उसका अर्थ। एक समय कम समयूनाय, एक समय कम अंतिम आवली यानी उदयावली की उत्कृष्ट और जघन्य असंख्यात भाग प्रमाण जो अनुभाग कृष्टिया है, वे सब असंख्यात भूभाग प्रमाण मध्यम कृष्टियों के रूप से नियम से परिणम जाती है। यह दसवीं भाष्य गाथा। हाँ उसी को बताए ना ऊपर जा बताएंगे। देखो उदयावली में प्रविष्ट हुई अनुभाग कृष्टियों के मध्यम कृष्टि रूप से उदय संपत्ति को अच्छी तरह से करने के लिए अवतीर्ण हुई है, यानी वो और भी अच्छी तरह से समझाना चाहते। अब इसके अवयवों का अर्थ कहते हैं। वह जैसे पश्चिम जो आवली वो पश्चिम आवली अर्थात उदयावली, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। एक समय कम अर्थात उदय समय से रहित उस पश्चिम आवली को उक्कसहेट्ठिमा अधस्तन और उपरिम असंख्यात भाग रूप विषय के संबंध से उत्कृष्ट और जघन्य संज्ञा का अवलंबन करने वाले जे अनुभागा दोनों को मिलकर वो बीच वाला वो जो है ना इन्वर्टेड वो नहीं चाहिए, अवलंबन संज्ञा का अवलंबन करने वाले जे अनुभागा ये दोनों को मिलकर इन्वर्टेड कमाए। कृष्टि स्वरूप जो अनुभाग है जे अनुभाग यानी कृष्टि स्वरूप जो अनुभाग है वे बहुभाग प्रमाण मध्यम कृष्टियों रूप से नियम यानी निश्चय से ही परिणम जाते। वही बात ही फिर दोबारा बता रहे कि जो असंख्यात भाग प्रमाण दोनों ओर के अनुभाग है वो मध्यम रूप से परिणम जाते हैं। पर कब परिणाम जाते हैं?
त्रिभुज संक्रमण भी पहले सब उदयावली में प्रवेश होने के बाद त्रिभुज संक्रमण भी चालू होता था जैसा उनका दिन है।
उदय में आते समय परिणाम है ना, पहले कैसे परिणाम
आते थे सभी में ऐसे होता है
ऐसा नहीं था।
उदयावली में प्रवेश हुए सभी
देखो देखो नहीं नहीं पहले पढ़ेंगे ऊपर तो नहीं होते वो। उदय में आते हुए होंगे जाएगा अभी फिर हम आगे पढ़ेंगे शायद बताएंगे। यह क्या कहा गया है? समाधान। यहाँ यह कहा गया है कि उदयावली में प्रविष्ट हुई सभी कृष्टियां जब तक उदय समय को नहीं प्राप्त होती है तब तक अपने अपने स्वरूप से निर्बाध रूप से रहकर क्या कहा तदनंतर यथाक्रम उदय रूप स्थिति को प्राप्त करके उसी समय एक समय थ्यूक संक्रमण की बात की थी ना उन्होंने अधस्तन और उपरिम असंख्यात भाग प्रमाण पुष्टियों के स्वरूप को छोड़कर असंख्यात बहुभाग प्रमाण मध्य की जो पुष्टियां हैं उस रूप से परिणम कर फल देकर निकल जाती है। फल देने की बात तो उदय के समय में है। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। और उनका इस प्रकार का परिणमन करना असिद्ध नहीं है क्योंकि परमागम के उपदेश के बल से यह बात सिद्ध है। इस प्रकार यह गाथा उदयावली में प्रविष्ट हुए अनुभाग को प्रधान करके उसमें रहने वाली कृष्टियों के उदय में प्रवेश करने की अवस्था में, ये बात महत्व की, पहले नहीं। उदीर्यमान मध्यम कृष्टियों रूप से परिणमन करने की विधि का प्रतिपादन करती है। इस प्रकार पहले की दो गाथाओं से इस गाथा में कथनचित अपुनरुक्तपना है, इस बात का व्याख्यान करना चाहिए, क्योंकि अपना कंसर्न तो उदयावली के निषेक पूर्ता था। अभी आप कहेंगे ऊपर के भी निषेक उसमें प्रवेश कर रहे हैं ना, वो भी जब उदय में आएंगे तो भी मध्यम रूप से होकर उदय में आ जाए। अब इस प्रकार इस गाथा के अर्थ को स्पष्ट करते हुए आगे के विभाषा ग्रंथ को आरंभ करते हैं। विभाषा, अब इस भाष्य गाथा की विभाषा करते हैं। यह सूत्र सुगम है। पश्चिम आवलिया तिकासन्न, पश्चिम आवलिया किसकी संज्ञा है? यह सूत्र सुगम है। तो कहते जा उदयावलिया सा पश्चिमावलिया, जो उदयावली है उसे ही पश्चिमावली कहते हैं, क्योंकि वह सबसे अंतिम है, इसलिए उसकी उस प्रकार से उपपत्ति निर्बाध रूप से बन जाती है। तदो तिस्से उदयावलियाए उदय समयम मोक्तुन शेषेषु समयेषु जा संघ किट्टी वेदिज्य माणिगा तिस्से अंतर किट्टियो सव्वाओ ताव धरिज्जंती जाव न उदयम पवित्ठा होती। अपने रूप से रखती है ऐसा लिखा है, समझ में? उदयावली में नहीं हो रहा, वो अपने अपने उस रूप ऊपर हो गई। अभी तो उस रूप से रहती, अपने जिस रूप से उदय में प्रवेश करती उस रूप से रहती है, देखो। इसलिए उस उदयावली के उदय समय को छोड़कर, यानी यहाँ यही बात बता रहे हैं, पढ़ा ना? नहीं पढ़ा? अभी तो पढ़ा। तदो तिस्से उदयावलियाए उदय समय मोत्तु न पढ़ा था। शेषेषु समयेषु जा संघ किट्टी वेदिज्य माणिगा तिस्से अंतर किट्टियो सव्वाओ ताव दरिजंती जावन उदयम पवित्ठा होती, ये पढ़ा था। इसलिए उस उदयावली के उदय समय को छोड़कर शेष है समयों में जो संग्रह कृष्टि वेदी जा रही है उसकी सभी अंतर कृष्टियां तब तक उसी रूप रहती हैं जब तक वे उदय में प्रवेश नहीं करती हैं। ये वहां उसमें अनुसमय होता है कि नहीं, ये चर्चा नहीं चल रही। ये वो मध्यम रूप से कब परिणमती उसकी चर्चा चल रही है। उसका अर्थ क्या है? तब तक वो मध्यम रूप से नहीं होती। ऐसा नहीं कि पहले से मध्यम रूप होकर वो पड़ी है और फिर बाद में उदय में आती है। दोनों ओर है, बस एक समय में वो टर्न होगा। पहले से मध्यम रूप होकर आती है ऐसा उसका अर्थ नहीं है, ये बताना चाहते हैं। यह सूत्र सुगम है। देखो उदयम जाधे पविठाओ, क्या करेक्शन है? वेदिज माणिगा, वेदिज माणिगा चाहिए, वो तो हो जाता है वेदिज माणिगा, वो बाद में उन्होंने वेदिज माणिगा बराबर है। पूर्व वेदित है दुसभयुण दुसमयुण बराबर, पहले उन्होंने शायद सुधारा होगा। उदयम जाधे पविठाओ ताधे ताधे चेव, यानी उसी समय, क्या कहते हैं? उदयम जाधे पविठाओ ताधे चेव तिस्से संग किट्टिये अग्ग किट्टी मादिम कादुन उवरी असंख्य जदि भागो जहन्नियम किट्टी मादिम कादुन हेठा असंख्य जदि भागो च मध्यम किट्टी सुपर्णमदि। वही बात दोबारा बता रहे हैं। किंतु जिस समय पहले बताए थे कि उदयावली में प्रविष्ट हुए हैं, अब उस समय तो अपने अपने रूप से है, और कहते जिस समय वे उदय में प्रविष्ट होती है उसी समय ये निर्णय कि मध्यम रूप से कब परिणमित होती है, उस संबंध ये निर्णय चल रहा है कि जिस समय वे उदय में प्रविष्ट होती है उसी समय उस संग्रह पुष्टि की अग्र अंतर पुष्टि से लेकर उपरिम असंख्यात भाग प्रमाण अग्रणी उत्कृष्ट की तरफ की अंतिम अंतर पुष्टियां तथा जघन्य अंतर पुष्टि से लेकर अदस्तन असंख्यात भाग प्रमाण अंतर पुष्टियां मध्यम पुष्टियों रूप से परिणम जाती है। यह सूत्र भी गतार्थ है। इस प्रकार अनंतर कही गई ये तीनों ही भाष्य गाथाएं यथाक्रम उदीर्णा प्रधान अनुभागोदय का, यानी अनुभाग का उदय और उसके साथ साथ उदीर्णा भी हो रही है उसका, तथा उदयावली में प्रविष्ट हुए अनुभाग प्रधान कर्मों के उदय की प्रधानता का ही कथन करती है, ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। विशेषार्थ जो पहले आठवीं और नौवीं भाष्य गाथाओं में कौन पृष्ठियां उदीर्णा को प्राप्त होती है और कौन पृष्ठियां अधस्थिति की गलना द्वारा क्रम से उदयावली में प्रविष्ट होकर उदय समय में उदीर्णारूप पृष्ठियों में संक्रमित होकर उदय को प्राप्त होती है, इस बात का स्पष्टीकरण कराए। इस भाष्य गाथा में यह बतलाया गया है कि उदयावली में प्रविष्ट हुए वे अधस्तन और उपरिम असंख्यात भाग प्रमाण पृष्ठियां एक समय कम उदयावली प्रमाण काल तक तदवस्थ रहती है तथा अंतिम समय में क्रम से ये कृष्टियां बहुभाग प्रमाण मध्यम कृष्टियों रूप से संक्रमण करके उदय को प्राप्त होती है। इस प्रकार इन 10 भाष्य गाथाओं द्वारा पृष्टि क्षपक के तीसरी मूल गाथा के अर्थ की विभाषा समाप्त करके अब यथावसर प्राप्त चौथी मूल गाथा का अवतार करने के लिए आगे के प्रबंध को आरंभ करते हैं। यहाँ उन्होंने बताया था क्षपक की 4 मूल गाथाएं, अब ये चौथी मूल गाथा यहाँ बताएंगे 174 नंबर की है। यह सूत्र सुगम है। अब 176 नंबर की जो गाथा मूल गाथा उसके पढ़ेंगे हम। किट्टी दो किट्टिम पुनः संकमदिखयेन किं प्रयोगेन किं शेषगम्य किट्टिय संकमोहोदियन्निसे। विवक्षित संग्रह पुष्टि का वेदन करने के बाद अन्य संग्रह पुष्टि का अपकर्षण करके वेदन करता हुआ क्षपक उस पूर्व वेदित संग्रह पुष्टि के शेष रहे भाग को वेदन करता हुआ क्षय करता है या अन्य प्रकृति रूप संक्रमण करके क्षय करता है, ऐसा प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर। यहाँ प्रश्न चाहिए हाँ वो उसका हाँ वेदित वो द का थोड़ा नहीं चाहिए तो रेगुलर चाहिए पूर्व वेदित। क्या पूछा समझ में आई बात? अभी प्रथम संग्रह पुष्टि का वेदन पूरा हुआ उसके बाद द्वितीय संग्रह पुष्टि का वेदन शुरू हुआ। अब जो नवक बंध वगैरह जो पड़े हैं तो कहते हैं शेष रहे भाग को वेदन करता हुआ क्षय करेगा क्या अन्य प्रकृति रूप संक्रमण करेगा? कोई भी बात कहो ना, अन्य प्रकृति रूप अभी उसका वेदन तो मिट गया। जब पहले संग्रह पुष्टि के बाद दूसरे संग्रह पुष्टि का अपकर्षण करके वेदन शुरू हुआ है, अब वो जो रहे हैं परमाणु अपने रूप से तो उदय में आने वाले नहीं है, अन्य रूप से होकर नष्ट हो जाएगा। अब यहाँ पढ़ेंगे हम ये मूल गाथा का, अभी वो बताएंगे विस्तार से। यह चौथी मूल गाथा एक संग्रह पुष्टि का वेदन करके पुनः अन्य संग्रह पुष्टि का अपकर्षण करके वेदन करने वाले पुष्टि क्षपक के उस संधि स्थान में जो प्ररूपणा भेद होता है उसका निर्णय करने के लिए अवतीर्ण हुई है। यथा किट्टी दो किट्टिम पुनः ऐसा कहने पर एक संग्रह पुष्टि का वेदन करके पुनः उससे अन्य संग्रह पुष्टि का वेदन करता हुआ उसे पूर्व में वेदन की गई चाहिए और वो की अलग चाहिए। पूर्व में वेदन की गई पुष्टि के शेष भाग को किस प्रकार क्षय करता है, क्या उदय से क्षय करता है या प्रयोग से क्षय करता है, इस प्रकार यह पृच्छा गाथा के पूर्वार्ध में निबद्ध है। ये प्रश्न गाथा के पूर्वार्ध में। हाँ, अभी प्रयोग निरुक्त संक्रमण ही समझना, यानी विशिष्ट विधि क्रिया। अब इसका भावार्थ इस प्रकार है कि क्या वेदन करता हुआ क्षय करता है या पर प्रकृति संक्रम के द्वारा संक्रम करता हुआ क्षय करता है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। शंका, यहाँ गाथा में खयेन ऐसा कहने पर क्या उससे उदय का ग्रहण होता है, ये शंकाकार पूछता है। ऊपर क्या पूछा था, पुनः संक्रमदि खयेन किम प्रयोगेण, तो कहते ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए क्योंकि क्षय के सम्मुख हुए उदय की ही क्षय संज्ञा है। तो कहते उदय होता ऐसा क्यों नहीं कहता, तो ये कैसा है, उदय रूप होकर नष्ट होने वाला है, तो उदय में आकर खिरने को भी यहाँ क्षय कहते हैं। ये यहाँ क्षप की बात चल रही है। किम शेष गम्य किट्टी ऐसा कहने पर पहले वेदी गई संग्रह पुष्टि के कितने ही भाग के अविशिष्ट रहने पर अन्य पुष्टि में संक्रम होता है, इस प्रकार गाथा के उत्तरार्ध में सूत्र का अर्थ के साथ संबंध करना चाहिए। परंतु यह पुच्छा दो समय कम दो आवली प्रमाण नवक बंध और उच्चिष्ठावली की अपेक्षा करती। अभी कौन से बाकी रहे, उच्चिष्ठावली माँ बाकी है और नवक बंध बाकी है। इस प्रकार यह मूल गाथा एक संग्रह पुष्टि से दूसरी संग्रह पुष्टि में संक्रम करने वाले एक क्षपक जीव उस संधि विशेष में दो समय कम दो आवली प्रमाण काल के भीतर उस काल में बंध को प्राप्त हुए नवक बंध समय प्रबद्धों की तथा उच्चिष्ठावली प्रमाण समय प्रबद्धों की उच्चिष्टावली प्रमाण समय प्रबद्ध क्यों कहे, उच्चिष्टावली प्रमाण निषेकों के कहना चाहिए थी। ऊपर क्या लिखा है, एवं ऐसा मूल कहा किट्टा दो तो किट्टी दो, किट्टी दो चाहिए, वो अस्पष्ट होगा। किट्टी दो किट्टी अंतरम संकम मानस तम्मी संधि विशेषे दु समयूण दो आवलियम इत्ते कालमी बद्ध नवक बंध ने नवक बंध नवक बंध बध हुआ समय पबद्धानम उच्चिष्ठावलियाए च, उच्चिष्टावली के लिए समय प्रबद्ध शब्द नहीं लगाया है, ये नीचे नहीं लगाना चाहिए, इन्हें ऐसा पढ़ेंगे हम तीसरी लाइन में। उस काल में बंध को प्राप्त हुए नवक बंध समय प्रबद्धों की तथा उच्चिष्ठावली की क्षपणा करने की, उच्चिष्टावली प्रमाण निषेकों की कहो पर समय प्रबद्ध नहीं कह सकते, उच्चिष्टावली की कह देना, उच्चिष्टावली की प्रमाण और समय प्रबद्ध निकाल देना तथा उच्चिष्टावली की क्षपणा करने की विधि का प्रतिपादन करती है। ख्याल में है ना क्या? क्योंकि ऊपर तो केवल उच्चिष्टावली है, इतना ही लिखा है, नीचे उसको भी समय प्रबंध लगा दिया। अब इसी का विशेषण। इस मूल गाथा में यह पूछा की गई है, ये हमेशा की जोड़ के रहे, की गई है कि अगली संग्रह पुष्टि का वेदन करते समय, अगले यानी नेक्स्ट, पिछली संग्रह पुष्टि का जो दो समय कम द्वावली प्रमाण नवबंध सत्ता में शेष रहता है, तथा उसके साथ ही जो उच्चिष्टावली प्रमाण फिर समय प्रबद्ध लिया, समय प्रबद्ध नहीं कहते उसको, निषेक कहो, निषेक शेष रहते हैं, उसका क्या उदय द्वारा वेदन होता है या वेदी जाने वाली संग्रह पुष्टि में संक्रमण होकर उसका वेदन होता है? ये यहाँ तो प्रश्नात्मक पूछा गया था, उसी का विशेषार्थ बताया। अब इस गाथा के इस प्रकार के अर्थ विशेष की दो भाष्य गाथाओं द्वारा विभाषा करते हुए आगे के प्रबंध को आरंभ करते हैं। अब उसके बारे में क्या होता है वो बताएंगे अभी। एदिस वे भाष्य गाहाओ, इस चौथी मूल गाथा की दो भाष्य गाथाएं हैं। यह सूत्र सुगम है, उसमें सर्वप्रथम प्रथम भाष्य गाथा की समुत्कीर्तना करते हुए इस प्रथम भाष्य गाथा को कहते हैं। 177 नंबर पर किट्टी दो किट्टिम पुण संकम दे नियम सापोगेन किट्टी से सगम पुण दो आवलियाए जम्बद्धम। पिछली संग्रह कृष्टि के वेदन करने के बाद जो भाग शेष बचता है उसे अन्य संग्रह कृष्टि में नियम से प्रयोग द्वारा संक्रमण करता है। परंतु पिछली संग्रह कृष्टि का दो समय कम द्वावली प्रमाण नवबंध रूप जो द्रव्य है तथा उच्चिष्टावली प्रमाण जो द्रव्य है वह शेष का प्रमाण है। परंतु लिखने की क्या जरूरत है, यानी शेष किसको कहना उसकी बात यहाँ बता दो। एक तो बताई कि उन्होंने जो शेष रहता है वो अन्य कृषि रूप से होता है, तो ये शेष क्या है? तो नवकबंध भी शेष है और उच्चिष्टावली भी शेष है। अब 94 पृष्ठ पर आते हैं। इस भाष्य गाथा सूत्र का अर्थ है एक संग्रह पृष्ठि के वेदे जाने के बाद, अभी मान लेते हैं ना स्रोत की प्रथम संग्रह पृष्ठि का वेदन चल रहा था, वो वेदन अभी उसका अंतिम समय उदय का है, वो निकल गया, शेष रहे प्रदेश पुंज को, तो वहां क्या शेष रहा था? उच्चिष्टावली बाकी रही। यहां पर वेदे जाने पर वहां नीचे क्या रहा? उच्चिष्टावली रहा, और ऊपर क्या रहा? तो नमक बंद रहे। इस प्रदेश पुंज को अन्य संग्रह पृष्टि में संक्रमण करता हुआ नियम सा निश्चय से ही प्रयोग से पर प्रकृति रूप संक्रमण करता हुआ क्षय करता है। पर प्रकृति रूप यानी क्रोध के प्रथम का क्रोध की द्वितीय हो जाएगा, क्रोध की तृतीय है तो मान रूप हो जाएगा, उसको ही हम पर प्रकृति रूप कहते हैं। क्योंकि पहले वेदी गई संग्रह पुष्टि के शेष रहे भाग का अन्य प्रकार से निर्लेपित होना संभव नहीं है, निर्लेपित यानी पूरा निकल जाना संभव नहीं है, परंतु उसमें शेष का प्रमाण कितना रहता है ऐसा पूछने पर किट्टीय शेषम पुनः दो आवली या सुजम्बद्धम, पिछली संग्रह पुष्टि के दो आवली प्रमाण काल के भीतर जो बांधा गया, यानी वो दो समय कम दो आवली है ना, बहुत शेष का प्रमाण है यह कहा गया है। यहाँ इस भाष्य गाथा में यद्यपि दो अवलियों में दो समय कम करके निर्देश नहीं किया गया है, तो भी व्याख्यान से इस प्रकार की विशेषता का ज्ञान यहाँ पर कर लेना चाहिए, क्योंकि पूरी अंतिम अवली में और दो समय कम द्विचरम अवली में बांधे गए नवबद्ध समय प्रबद्धों का यहाँ शेष पने से संभव दिखाई देता है। तथा उच्चिष्टावली प्रमाण प्रदेश मुंजे यहाँ पर शेष रहता है, यह बात यहाँ अनुक्त सिद्ध जाननी चाहिए। यानी वो तो सिद्ध ही है, उसको बताने की जरूरत नहीं है, नहीं बताया फिर भी सिद्ध है। अब इसी अर्थ को स्पष्ट करने के लिए आगे के विभाषा ग्रंथ को आरंभ करते हैं। विभाषा, अब इस भाष्य गाथा की विभाषा की जाती है। यह सूत्र सुगम है। जम संघ किट्टिम वेदे दूण तदो से काले अन्न संघ किट्टिम पवेद यदि तदो तिस्से पूर्व समय वेदिदाए संघ किट्टिये जे दो आवलिय बद्धा दु समयुना आवलिय पविठा च अस्सिम समय वेदिज्यमाणी गाये संघ किट्टिये पवोगसा संकमंती। जिस संग्रह कृष्टि का वेदन करके अनंतर समय में अन्य संग्रह कृष्टि का वेदन करता है, उस समय उस पूर्व समय में वेदी गई संग्रह कृष्टि के जो दो समय कम दो आवलीबद्ध नवक समय प्रबद्ध है, वे इस समय वेदी जाने वाली संग्रह कृष्टि में प्रयोग से संक्रमित होते हैं। यह सूत्र गतार्थ है। इतनी विशेषता है कि प्रयोग से संक्रमित होते ऐसा कहने पर उच्चिष्टावली प्रविष्ट प्रदेश सत्कर्म थ्यूक संक्रमण से उदय में प्रविष्ट होते हैं। यानी अभी ये पहली संग्रह कृष्टि समाप्त तो हुई, दूसरी का उदय शुरू हुआ, तो नीचे का एक निषेक जो अभी उदय रूप होकर जाने वाला है उसका थ्यूक संक्रमण होकर द्वितीय संग्रह कृष्टि रूप होकर उदय में आता है। अभी हमने अनुभाग में कैसा देखा, मध्यम रूप से हो गता है। यहाँ क्या हुआ, थे परमाणु किस रूप, प्रथम कृष्टि रूप से। अभी उदय कैसा चलेगा, द्वितीय कृष्टि रूप होकर उदय में आएगा। उसकी आवली बाकी है ना, आवली के निषेक में नीचे का जो उदय है वो नीचे एक एक खिसक जाएगा, उदय में आते रहेगा, अपने रूप से उदय में नहीं आएगा। किस रूप से उदय में आएगा, द्वितीय संग्रह कृष्टि रूप से होकर। अभी मध्यम की बात मत करो, अभी अपना विषय क्या चल रहा है, पहली संग्रह पुष्टि का उदय चल रहा है कि दूसरी का, किस रूप से है वो विषय अभी अभी नहीं रहे। अभी हमारा विषय जो चल रहा है उसकी बात करना है कि पहले संग्रह पुष्टि रूप से जो पड़े हैं वो किस रूप से आएंगे, द्वितीय संग्रह पुष्टि रूप से आएंगे। तो द्व्यूह संक्रमण के द्वारा प्रविष्ट होते हैं, तथा शेष सत्कर्म को भी अधप्रवृत्त संक्रम के द्वारा संक्रमित करता है। शेष सत्कर्म यानी कौन सा, नवक बंध है, उसका कौन सा संक्रमण चल रहा है, अधप्रवृत्त संक्रमण चल रहा है संक्रम के द्वारा। वो बीच में गैप नहीं रखी ना, यानी उसका जो अपना अपना प्रोसेस अलग अलग है। द्वितीय संग्रह पुष्टि का जा सकता है, वैसे यहाँ लिखा तो नहीं है, अपन अभी वो कितना रह गया, दो समय कम दो आवली इतना ही है। इस प्रकार यह यहाँ प्रयोग शब्द का अर्थ है। इस प्रयोग से संग्रह कृष्टि शेष कृष्टि अंतर में संक्रांति होती है। संग्रह कृष्टि शेष की कृष्टि, यानी संग्रह कृष्टियों में से जो शेष है वो संक्रामित होती है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। इस प्रकार इस भाष्य गाथा के अर्थ की विभाषा की। इस प्रकार इस बात का ज्ञान करने के लिए उपसंहार वाक्य को कहते हैं। एसो परम भाष्य गाहाय अत्तो, यह प्रथम भाष्य गाथा का अर्थ है। इस प्रकार इस भाष्य गाथा का उपसंहार करके अब दूसरी भाष्य गाथा के अर्थ की विभाषा करने के लिए आगे के प्रबंध को कहते हैं। इससे आगे एत्तो चाहिए ना, विधीय भाष्य गाहा है समुक्कीर्तना, पीछे क्या लिखा है, एत्तो लिखा है क्या, एत्तो लिखा है शुद्धि पत्रक नहीं, रेगुलर पेज नंबर 95 देखना है आपको, लास्ट एसो एत्ता हुए, एत्ता विधि भाषा का है समूह कितना, समूह कितना के लिए क्या लगाते हैं, 81 हर जगह एत्तो ही लिखा है, वहां एत्ता लिखा है, परंतु वो भी एत्तो ही चाहिए, एत्तो। ये 204 पृष्ठ पर पहली लाइन पीछे जो सूत्र लिखते हैं ना, एसो परम भाषगाहा है अत्तो एत्तो विद्या भाषगा है समुकितना, एत्ता हुआ वो एत्तो चाहिए वहां पर। और यहाँ एतो का भी उसका भी एतो करना, दोनों जगह अच्छुद्धि है। नाइन्टी फाइव पेज पर नीचे का सूत्र जो है एसो बराबर है, एसो तो पड़म पड़म के लिए लिखा है, उसके नीचे एतो विद्या भाषगाहा है समुकितना, और क्या पीछे जो उन्होंने लिखे हैं सारे परिशिष्ट में, वहां एत्ता लिखा है, वो भी एत्तो चाहिए, 204 पृष्ठ पर पहली लाइन 204। हाँ अभी पढ़े, यह सूत्र सुगम है, यानी ये दूसरी भाष्य गाथा की समुत्तना करने जा रहे हैं, वो अभी यहाँ आते हैं 96 पेज पर। गाथा पढ़ेंगे 178, इसमें 180 है ना टोटल, कषाय पावन में टोटल गाथा है 180 है ना, इसमें से 178 चल रही है। समयूणा च पविठा आवली आहो दिपणम किट्टिये पुन्नाजं वेदयदे एवं दोसं कमे होन्ति। पूर्व में वेदी गई संग्रह कुष्ठि के और तत्काल वेदी जाने वाली संग्रह कुष्ठि के संधि स्थान में, यानी पहले का उदय समाप्त हुआ अभी दूसरी का शुरू हुआ, उसको संधि काल का, उस संधि स्थान में प्रथम संग्रह कुष्ठी की एक समय कम एक आवली उदयावली में प्रविष्ट होती है, तथा जिस संग्रह कुष्ठी का अपकर्षण करके इस समय वेदन करता है उसकी पूरी आवली उदयावली में प्रविष्ट होती है। केवल आवली काल तक का ही कंसर्न है, वैसे प्रथम स्थिति उसकी बनी अंतर्मूर्त प्रमाण, परंतु उदयावली की बात चल रही है कि पहले हम चार समय की आवली समझते हैं, तो पहले तो इसका उदय होते होते क्या हुआ, एक एक नीचे आ रहा है ना, तो किरते किरते सब नीचे आ गए, तो ये उदय हुआ इसका। अब क्या होता है, अब जो आवली बाकी रही तो ये द्वितीय स्थिति ऊपर आके उसका पूरा अंतर्मूल प्रमाण ये चालू हो गया, एक दो तीन चार उसकी ये उदयावली कहलाएगी, यानी वर्तमान समय में उसका उदय है, परंतु इसका अपने रूप से उदय नहीं होगा, वो अन्य रूप से होकर उदय में आएगी। तो इसके कितने एक समय का मावली प्रमाण, क्योंकि उदय का समय है वो इस रूप होकर उदय में आ रही है, वो अपने रूप से नहीं है। तो एक समय का मावली इतना लिखा है, देखो सब सब ये, क्योंकि ये क्या है
संबंध है राज्य,
हाँ प्रदेश उदय है, परंतु अभी ये प्रथम संग्रह कृष्टि वाला था, वो द्वितीय प्रदेश गलते है, परंतु उसका अनुभव कम होकर जाता है ना, क्रोध की प्रथम संग्रह कृष्टि है वो द्वितीय कृष्टि रूप से, हाँ अब जब हम अनंतानुबंधी आदि की बात करते हैं, हाँ वो संक्रमित होकर उदय में आ जाते हैं। ये तो आपस में संक्रमित होते ही रहते ना, जब ऐसा लोभ का उदय चल रहा है तो मान माया बाकी जो वहाँ पड़े हैं वो उस रूप से उदय में आएंगे। हाँ यो थ्यूक संक्रमण के द्वारा उसकी जो कुछ जाति जो कुछ बदलना है, हाँ हाँ इनके कारण उसमें फर्क नहीं होता, जो उदय रूप हो रहा है जो जिस परिणाम से जिसका जैसा उदय चल रहा है, और वहाँ जो उदय की जिसकी स्थिति अभी पूरी हुई है, फल देना है, फल देने ने उदय में आना है, तो उदय रूप होकर जो उदय रूप प्रकृति है उस रूप होकर निकल जाएगी। तीर्थंकर प्रकृति का बंद हुआ इतने काल तक क्या करेगी, उदय में तो आनी नहीं है, तो उसमें पुण्य मिलता है तो किसी पर उपसर्ग क्यों होता है, चेंज होकर अन्य रूप से वो चलता रहता है उसका, वो तो उतने काल पहले वो जो दो महीने पहले होती है उसके पहले तो नहीं हो रही थी, अभी नरक में तो डंडे भी पड़ रहे
हैं,
नरक में डंडे भी पड़ रहे हैं, अभी तीसरे नरक में क्या होगा, कम पड़ते होंगे डंडे, वो बात से अलग बात है, उनके परिणाम अलग बात है। देखो ये हम ये पूरे सूत्र का अर्थ फिर पढ़ते हैं। पूर्व में वेदी गई संग्रह पुष्टि के और तत्काल वेदी जाने वाले संग्रह पुष्टि के संधि स्थान में प्रथम संग्रह पुष्टि की एक समय कम एक आवली उदयावली में प्रविष्ट होती है। एक समय क्यों कि हम कम किया, क्योंकि वो अन्य रूप से उदय हो रहा है इसलिए, तथा जिस संग्रह पुष्टि का आकर्षण करके इस समय वेदन करता है, क्योंकि उसकी तो पहली पूरी प्रथम स्थिति बन गई अभी, पर यहाँ तो बात वो उदयावली की बता रहे, तो उसकी पूरी आवली उदयावली में प्रविष्ट होती है, यानी उसके तो वर्तमान समय से लेकर सब निषेक रचना है। इस प्रकार दो आवलियां संक्रम में होती हैं, संक्रम में होती एवं दो संक्रम में होती, क्या कहना चाहते देखेंगे। यह दूसरी भाष्य गाथा एक संग्रह पुष्टि से दूसरी संग्रह पुष्टि के अंतर में संक्रम करने वाले जीव के संधि स्थान में पूर्व और उत्तर संग्रह पुष्टियों के आवली में प्रविष्ट हुए प्रवेशक जीव के प्रमाण का उदाहरण करने के लिए आई है। उसमें सर्वप्रथम गाथा के पूर्वार्ध द्वारा पहले वेदी गई संग्रह पुष्टि के एक समय कम आवली प्रमाण उच्चिष्टावली से संबंध रखने वाली गुणश्रेणी गोपुच्छाएं संभव है, यह निर्देश किया है, क्योंकि वो भी गुणश्रेणी रूप से पड़ी थी ना यहाँ पर, पहली जो आवली बाकी है वो गुणश्रेणी रूप से जो रचना हुई थी वैसे ही है, अब ये जो नया यहाँ पर निषेक रचना हुई है वो भी गुण श्रेणी रूप से है, परंतु वो बात तो आवली के लिए ही बता रहे, ऊपर की बात यहाँ नहीं कह रहे। एक तो प्रथम संग्रह पुष्टि की और यह है द्वितीय संग्रह पुष्टि। ये उदय रूप नहीं है, परंतु ये दोनों ही उदयावली में है, इतनी बात बता रहे। उसमें सर्वप्रथम गाथा के पूर्वार्ध द्वारा पहले वेदी गई संग्रह पुष्टि के एक समय कम आवली प्रमाण उच्चिष्टावली से संबंध रखने वाली गुणश्रेणी गोपुच्छाएं संभव है, यह निर्देश किया गया है। संभव है यानी पाई जाती है, तथा उत्तरार्ध द्वारा भी इस समय अपकर्षण करके वेदी जाने वाली संपूर्ण आवली प्रमाण गोपुच्छाएं उदयावली के भीतर संभव है, यह प्रतिपादन किया जाना चाहिए। अब इस गाथा के अवयवों के अर्थ की थोड़े में प्ररूपणा करेंगे। यथा समयूणा च पवित्टा, ऐसा कहने पर पहले वेदी गई संग्रह पुष्टि के एक समय कम आवली उदयावली के भीतर प्रविष्ट हुई, तथा जिस संग्रह पुष्टि को इस समय आकर्षण करके वेदन करता है संपूर्ण आवली उदयावली में प्रविष्ट होती है। इस प्रकार एवं दो संक में होंगे, ऐसा कहने पर इस प्रकार ये दो आवलियां संक्रम में होती है। इस प्रकार एक संग्रह पुष्टि को वेदन करके पुनः अन्य संग्रह पुष्टि का आकर्षण करके वेदन करने वाले के उस संधि में दो आवलियां होती है, अन्यत्र नहीं। यह उक्त कथन का तात्पर्य है, यानी ये उदयावली में ये दो अलग अलग ये गुणश्रेणी आवली प्रविष्ट, एक प्रथम संग्रह पुष्टि की और एक द्वितीय संग्रह पुष्टि, अथवा संक्रम में अर्थात पुष्टियों की क्षपना संबंधी इस संधि विशेष में। अच्छा, संक्रम में उन्होंने संक्रम क्षपना को भी कहा था, दो आवलियां संक्रम क्षपना में क्षपना कर रही है, दो आवलियों की क्षपना हो रही है, एक उदय रूप की और ये जो पहले वाली जो थी अभी उसका उदय मिट गया, परंतु खिरने वाले तो ये भी है यहाँ पर, इसलिए उनके संक्रम में दो आवली कहा होना है। और इसी पोजीशन पर ऐसा होगा, इसका तो एक एक निषेक गल जाएगा और ये तो नष्ट हो जाएगी। संक्रम में का अर्थ क्या देखता, पुष्टियों की क्षपणा, क्योंकि क्षपणा को भी संक्रम शब्द आता है। पुष्टियों की क्षपणा संबंधी इस संधि विशेष में ये दो आवलियां होती है, ऐसा व्याख्यान करना चाहिए। अब इसी अर्थ को स्पष्ट करने के लिए आगे के विभाषा ग्रंथ को आरंभ करते हैं। इति विभाषा, अब इस गाथा की विभाषा की जाती है। यह सूत्र सुगम है, तम जहां वह जैसे, यह सूत्र सुगम है। अब सूत्र बताएंगे विभाषा का। अन्नम किट्टिम संकम मानस पूर्व वेदिदाय समयुणा उदयावलिया वेदिज्य माणिगाय किट्टी पड़ियुन्ना उदयावलिया एवं किट्टी वेदगस्य उक्तस्येन दो आवलियाओ। एक संग्रह पुष्टि के बाद दूसरी संग्रह पुष्टि का संक्रमण करने वाले क्षपक के पूर्व में वेदी गई संग्रह पुष्टि की एक समय कम उदयावली और वर्तमान में वेदी जाने वाली संग्रह पुष्टि की पूरी उदयावली, इस प्रकार पुष्टि वेदक की उत्कृष्ट से दो आवलियां एक साथ पाई जाती है। कब होता है, एक का उदय मिटा और दूसरे का शुरू हुआ, संधि में ही ऐसा होगा कि दो दो अवलिया वहां अवेलेबल है। उदय तो जो नया हुआ शुरू उसी का होगा, और वो एक जो पुरानी आवली वहां उच्चिष्ठावली है उसका एक एक निषेक इस उदय रूप होकर उदय में आएगा। पहले संग्रह कुष्ठी की वो उच्चिष्ठावली, वो द्वितीय संग्रह रूप एक एक निषेक टर्न होकर उदय में आएगा। शुद्धि पत्रक है कहाँ पर
ये जो अभी सूत्र पढ़ा
वेदी जाने वाले हाँ
वेदी जाने
वो बराबर है वेदी जाने वाली वो पहले उन्होंने करेक्शन किया हुआ है हाँ बाद में उन्होंने करेक्शन किया अब इसका अर्थ पढ़ेंगे नीचे एक संग्रह कृष्टि से दूसरी दो दीर्घ चाहिए दूसरी संग्रह कृष्टि में संक्रमण करने वाले क्षपक के संक्रमण ने अभी इसका उदय चल रहा है अभी दूसरे का चलेगा संक्रमण हुआ उसमें उस दूसरी अवस्था में उदयावली के भीतर दो संग्रह कृष्टियों की प्रथम स्थिति होती है यानी उदया जो प्रथम स्थिति है नीचे उदयावली में दो अवली बाकी है उदयावली में दो निषेक रचना अलग अलग है यह उक्त कथन का तात्पर्य है परंतु वे दोनों ही आवलियां एक संग्रह पृष्टि से दूसरी संग्रह पृष्टि में संक्रमण करने वाले जीव के एक समय कम एक आवली काल तक संभव है पुनः शेष काल में यानी उसके पश्चात सर्वत्र ही वेदी जाने वाली संग्रह पृष्टि के वेदन काल तक एक उदयावली होती है क्योंकि उदयावली के गल जाने पर उच्चिष्ठावली के गल जाने पर वहां दूसरा प्रकार संभव नहीं उपलब्ध होता यानी ये दो अवलियां कब तक होगी जब तक ये गल नहीं जाती ये गल जाने के बाद क्या होगा उसकी अपनी जो एक अवली है वही रहेगी
होती है ये जो एक उच्चिष्ठावली काल तक इतनी असंख्या बुरी हो जाएगी और पीछे कम हो जाएगी यानी वहां से जो दूसरे समय
वो असंख्यात गुणा आती है ऊपर से
अपने कल्याण से जो दो एक आवली काल तक जो दोनों एक आवली काल तक जो दो संग्रह नीचे पड़ी है वहाँ पे कभी तो निर्जरा ज्यादा हो जाती है और पीछे कम हो जाएगी
कम नहीं होगी असंख्यात गुणा ही होगी क्योंकि वो उसमें ऐड हो गए क्योंकि उसमें तो ये ऐड हो गए ना असंख्या गुना ऑलरेडी उसमें आ ही रहा है ऊपर से प्रति समय आ रहा है जो अभी बाकी है उसमें तो कुछ नहीं आएगा
नहीं।
वो तो कब रुका था हाँ अगल रुका अगल रुक गया था तो उसमें तो कोई बढ़ने का चांस नहीं था और इसमें तो प्रति समय आ रहा है ऊपर से बाद में तो एक ही अवली होती है क्योंकि दूसरा भी प्रकार संभव नहीं इस प्रकार इस बात का ज्ञान कराने के लिए आगे के सूत्र को कहते हैं अब 98 पेज पर आ गए कहते तावो भी किट्टिदो किट्टिम संकम मानस से काले एका उदयावलिया भवति वे दोनों आवलियां भी एक संग्रह पृष्टि से दूसरी संग्रह पृष्टि में संक्रमण करने वाले क्षपक के तदनंतर समय में अर्थात एक समय कम उच्चिष्टावली के गल जाने पर एक उदयावली मात्र रह जाती है ये पहले बताया था ना क्योंकि इतने निशे किसके नष्ट हो गए तो अभी एक ही रह जाएगी आवली यह सूत्र गतार्थ है इतनी विशेषता है कि सूत्र में से काले एगा उदयावलिया ऐसा कहने पर उसका अर्थ है एक समय कम उदयावली प्रमाण गोपुच्छाओं के जिसको हम उच्चिष्टावली कह रहे थे स्थूक संक्रमण द्वारा वेदी जाने वाली संग्रह कृष्टि में संक्रांत होने पर तदनंतर समय से लेकर एक ही उदयावली होती है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए और यह अर्थ सभी संग्रह कृष्टियों का वेदन करने वाले क्षपक के संधि काल में प्रत्येक के आयोजित करना चाहिए जब एक संग्रह कृष्टि का वेदन समाप्त होकर अन्य का शुरू होता है वो हर एक संधि काल में ऐसा ही समझना चाहिए। इस प्रकार दूसरी भाष्य गाथा का अर्थ समाप्त तो हुआ। तत्पश्चात कृष्टि क्षपक की चौथी मूल गाथा समाप्त तो होती है। इस बात का ज्ञान कराने के फलस्वरूप उपसंहार वाक्य कहते हैं। इतने चौथी मूल गाथा खवणाए समत्ता, यहाँ कोई करेक्शन भी था ना? एवं एती है ना, एती है ना चाहिए ना, डबल था एवं एती है ना। इस प्रकार सपना में चौथी मूल गाथा समाप्त हुई। यह उपसंहार वाक्य सुगम है। ऊपर प्राकृत में सूत्र के नीचे की लाइन 236 का सेकंड वाक्य उसका एवं एती है ना, वो डबल तो करना एवं एती है ना। इस प्रकार इतने प्रबंध द्वारा सूक्ष्म सांप्रायिक गुणस्थान को मर्यादा करके चारित्र मोह की क्षपणा में संग्रह पृष्टि वेदक के प्ररूपना संबंधी विभाषा और उसी प्रसंग से सूत्र स्पर्श करके, क्योंकि पहले तो उन्होंने बहुत विस्तार से व्याख्यान किया, फिर सूत्र स्पर्श किया, सूत्र के आधार से भी दोबारा वही प्ररूपणा की। अब यह सभी प्ररूपणा क्रोध संज्वलन के उदय से क्षपक श्रेणी पर चढ़े हुए पुरुष वेदी के कही है। इस बात का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं कि ऐसा परुणा पुरुष वेदिगस्स कोहेण उठिदस्स। यह प्ररूपणा क्रोध संज्वलन के उदय से क्षपक श्रेणी पर चढ़े हुए पुरुष वेदी क्षपक के जाननी चाहिए। यह अनंतर पूर्व सूक्ष्म सांप्रायिक गुणस्थान पर्यंत कही गई सभी प्ररूपणा क्रोध संज्वलन कषाय के उदय से क्षपक श्रेणी पर चढ़े हुए पुरुष वेद के उदय वाले क्षपक जीव के कही गई है। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। यही रुकते हैं। जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सो